الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے دوستو اور پردہ نشین مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں یہ شعبان کا مہینہ آج چھٹی تاریخ ہو گئی شعبان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی وہ دعا ہم ضرور پڑھتے رہا کرے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جاتی تھی بنسبت اور مہینوں کے اس لیے کہ شعبان نکلا ہے شعبہ سے لفظ شعبہ شعبہ کا معنی بہت سارے اللہ کے بہت سارے شعبے اور برانچز کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور شعبان کا معنی تو اسپریڈ پھیلانا ظاہری بات ہے کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت کو پھیلائے گا رحمت کو ڈالے گا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جو معذوری کے میرے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے تو میں اس کو آنے والے شعبان میں رکھتی تھی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی تھی اور اپنے رمضان کے لاس رمضان کی قضا روزے میں پورا کر لیتی تھی چونکہ اور دنوں کے اندر میں مجھے ایک خدمت کرنی ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت نہیں ملتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ اپنے قضا روزے کو جو عورتوں کے نسوانی جو ضروری معذوری روزے ہیں جو معذوری کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہیں اس کو میں رکھ لیتی تھی یہ بات خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اس مہینے میں اگر زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 13, 14, 15 کو روزہ رکھ لینا چاہیے 13, 14, 15 کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا پھر منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے असल में बात क्या है कि आने वाला जो महीना है रमजान का है, और रमजान के लिए रमजान का ये इंट्रोडक्शन है, मुकदमा है। इसमें हम मेहनत करके अपने दिल को पाक साफ कर लेंगे तो आने वाले रमजान के महीने की बरकतें अल्लाह हमें नसीब फरमाएंगे। उन तमाम बहुत सारे मुजाहिदा करने पड़ते हैं इस महीने में ताकि रमजान की बरकतें हमें मिले। उन मुजाहिदों में से सबसे बड़ा मुजाहिदा वो है जबान का मुजाहिदा। हमारे हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास रमजान में खानकाह में लोग भर जाते थे, बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाते थे, बड़े बड़े उलमा। हजरत फरमाते थे खूब खाओ, रमजान में खूब खाओ, यानी कि इफ्तारी में, दिन में नहीं, इफ्तारी में, सहरी में खूब खाओ, क्योंकि वो तो लंगर होता है ना, सबका खाना बन जाता है। खूब सोवो लेकिन बातें मत करो। क्या फरमाते थे? जबान को कंट्रोल करो, खूब खाओ खूब सोवो। तुम सोवोगे खाओगे नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम बात ज्यादा करोगे तो गीबत हो जाएगी, तुम्हारा रोजा ही खत्म हो जाएगा। फिर वो भी मस्जिद में और वो भी खानकाह में, बातचीत पर पाबंदी थी। हाँ, तुम अपना काम करते रहो, खाओ पियो सो, नमाज के बाद सो, सुबह सो, दोपहर में सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात में सो जाओ, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ लो और खाओ पियो सो। लेकिन बातें नहीं, एक तो मस्जिद का अदब बहुत जरूरी है। इसीलिए मालेगांव का एक आदमी खानकाह में आया था हजरत के पास, मालेगांव ढोलिया, वो सहारनपुर खानकाह में गया था। उसने अपने गले में तख्ती लगा दी थी, तख्ती 30 दिन के लिए, पूरा दिन तख्ती है। वो क्या लिखा था उस पर? मुझसे कोई बात ना करे, मुझसे कोई बात न करे। क्यों? वाकिया यह है कि यह बोलना जो है इंसान को मेरी माएं और बहनें बहुत सारी बरकतों से महरूम कर देता है, और बारिक लाना शाबान में बरकतें खत्म हो जाती है। रमजान की तैयारी के लिए मुजाहिदा करना है, कोशिश करना है, जबान यह है। और मुजाहिदा का मतलब क्या है? आदमी का अपने आमाल और अखलाक को सही करने के लिए और अल्लाह के बताए हुए अहकाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी में लाने के लिए कोशिश करना, वो असल है। और उन तमाम अहकाम को अदा करने के लिए नफ्स और शैतान के अगेंस्ट और मुखालिफत करना, इसका नाम मुजाहिदा है। नफ्स की नहीं सुनना और शैतान की नहीं सुनना। वैसे लुगत में मुजाहिदा का माना है ट्राई, बेस्ट ट्राई, कोशिश, एफर्ट, ये तो इसी से यहां मुराद क्या है? नफ्स की मुखालिफत, शैतान की मुखालिफत। बहुत जरूरी है जबान की हिफाजत करना। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल ने अल्लाह तबारक व ताला को ख्वाब में 100 मरतबा देखा, 100 मरतबा। तो उन्होंने अल्लाह से पूछा एक मरतबा, आई रब्बी कई तरीक मिले, आई रब, ओ मेरे रब्बा, कई तरीक मिले, आप तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता अल्लाह से पूछा है, हाँ, आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है? تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اترک نفسک و تعال، نفس کو چھوڑ اور میرے پاس آ جا. کیا بات ہے، اترک نفسک و تعال. اس لیے کہ نفس ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، دوسری نہیں ہوتی ہے. نفس انسان کو اللہ کی مخالفت ہی کی طرف لے جائے گا. اسی لیے صوفی صاحب، صوفی حضرات، صوفیہ نے یہی کہا ہے، میری مائیں اور بہنیں، نفس کی مخالفت کرنے کا نام مجاہدہ ہے. میرا نفس مجھے کہتا ہے چلو مارکیٹ میں گھومنے کے لیے، مخالفت کرو نہیں، میں ابھی قرآن پڑھوں گی، میری نماز زور کی چلی جائے گی، میں نے کیا کی. مخالفت نفس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی. امام احمد بن حنبل نے اللہ سے پوچھا، اے رب کیف الطریق الیک، اترک نفسک و تعال. بہت ساری کتاب میں امام احمد بن حنبل سے لکھا ہے، بہت ساری کتاب میں بایزید بستامی سے بھی لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے اور احیاء علوم میں بھی لکھا ہوا ہے. تو نفس کے تقاضوں کو چھوڑیں گے تو اللہ ملے گا. اس لیے کہ یا تو نفس کا مانو یا اللہ کا مانو، دو میں سے ایک کا مانو. یا یہاں پر ابھی لائٹ چالو ہے، بند کر دو تو اندھیرا ہوگا، یا تو پھر روشنی ہوگی، چالو کریں گے تو روشنی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں شعبان کے مہینے کا نور، شعبان میں پانچ لفظ ہیں، شین، عین، با، الف، نور، شعبان. شین سے شرافت ہے، اللہ اس کو بہت برگزیدہ اور شریف بنائے گا، اور عین سے علو ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند کرے گا، اور بی سے بر ہے، اللہ اس کو نیک لوگوں میں سے بنائے گا، اور الف سے الفت ہے، محبت ہے، اللہ اس کو محبت اپنی عطا فرمائیں گے. جب شرافت مل جائے، اس کا درجہ بلند ہو، اور نیک و کام کا، نیکی کا کام کرنے والا بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، تو پھر اخیر میں نور ہے، اللہ کا نور اس کے دل میں پیدا ہوگا. جب نور پیدا ہوگا تو پھر دیکھنے کا کیا ہے، رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرے گا. اسی لیے اولیاء کرام 6 مہینے سے دعا کرتے تھے رمضان کا مہینہ ملے، رمضان کا مہینہ ملے، اور رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اللہ جو کچھ عمل کیا قبول کر، قبول کر، قبول کر. اس لیے کہ تو ہول سیل میں جاتا ہے نا رمضان کو، تو ہول سیل لینے کے لیے ہمیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو برابر کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ جو کام سال بھر کرتے رہے وہی شعبان میں کرے، وہی رمضان میں کرے، فائدہ کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس بات کو بیان کیا، شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث ہے، الکیس من دان نفس. دیکھو نا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ہوشیار کون ہے، کلیور کون ہے، انٹیلیجنٹ کون ہے، سمجھدار کون ہے، کون ہے؟ فرمایا جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے. الکیس من دان، دان پریسنگ، کنٹرولنگ his desire، اور وہ امیل علیما بادل موت، ان پریکٹس کرے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی تیاری کرے. میں آنکھ بند ہو جائے گی نا، کوئی نہیں آئے گا. یہ تو مفتی صاحب کا لقب بھی ختم، آپا جان کا لقب بھی ختم، اب مرحوم مرحوما، مرحوم مرحوما، سارے ٹائٹلز فنش، ساری دکانیں فنش، سارے جاب فنش، ختم ہو گیا تمہارا فیصلہ، آگے چلو. اب مرنے کے بعد ہی سے جنازہ اٹھائیں گے، تبھی سے شروع ہو جاتا ہے. فرشتے آئیں گے، نہیں آئیں گے، کیسا آدمی ہے، کیسا نہیں ہے، تبھی سے، بلکہ روح نکالتے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے. پھر قبر میں کیا ہوگا، پھر قبر میں تو لمبا وقت ہے نا، قیامت تک، پھر قیامت میں کیا ہوگا، वो तो एक दिन 1,000 साल का है, 1,000 अल्फ सनति, 1,000 साल, और कुरान की दूसरी आयत में 50,000 साल के बराबर। ओ जाओ, 1,000 साल के बाद तो आदम अलैहिस्सलाम मिलेंगे, और 1,000 साल के बाद तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम मिलेंगे, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम मिलेंगे, फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम, फिर ना तलाश करते 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 कई हजारों साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। गर्मी कितनी होगी। इसलिए जो मरने के बाद की तैयारी करे, हमें तो फिक्र ही नहीं होती है। कौन सी दुआ पढ़ने की रोजाना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फीमा बादल, 25 बार पढ़ लो इंशाअल्लाह रोजाना, तो क्या होगा, अल्लाह उसको शहादत की मौत अता फरमाएंगे। मौत की फिक्र और उसके दिमाग में मौत की तैयारी की फिक्र रहनी चाहिए। ये मेरी आखिरी रमजान, आखिरी शाबान, आखिरी रमजान, क्या मालूम कितने चले गए, देखो मस्जिद में से चले गए कि नहीं चले गए, बहुत सारे चले गए दुनिया से, हमें भी जाना है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, समझदार, इंटेलिजेंट, क्लेवर वो मर्द है, वो औरत है जो अपने नफ्स को दबाए और आखिरत की फिक्र करे। वलाजिजु मन अतबा नफ्सा, और हमारे यहां कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेवकूफ, फुलिश, आजीज कौन है, जो अपने नफ्स के पीछे चले, जो डिजायर चाहे वो करे। चलो चलना है घूमने के लिए, नमाज जामे तो जा रहे, नफ्स तो फॉलो कर लिया, अल्लाह का फॉलो नहीं किया। इस तरीके से बहुत सारी मिसाल है, जो जो नफ्स को ताबे कर ले, अपने यानी उसके ताबे हो जाए, तो फिर फरमाया वो फुलिश है, बेवकूफ है, तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से लंबी लंबी उम्मीद रखता है कि माफ हो जाएंगे, दरगुजर हो जाएगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ये फुलिश है, ये बेवकूफ है। कौन कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सब कह रहे हैं, ये बेवकूफ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ये कहना, हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, गुनाह करने के बाद यूं कहना अल्लाह गफूर रहीम है, बड़ा खतरनाक है। हजरत थानवी फरमाते गुनाह करने के बाद यूं कहना कि अल्लाह गफूर रहीम है, गुनाह भी करता है और ऊपर से अल्लाह गफूर रहीम भी करता है, फरमा ये बड़ा खतरनाक है। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उन्हें ऐसा ही है, एक काफिर है, कुफ्र में मुब्तला है, मुशरिक है, शिर्क करता है, आप उसको इस्लाम की दावत दे रहे हैं, भाई आ जाओ मुसलमान हो जाओ, अल्लाह गफूर रहीम है, पागल है, कुफ्र भी करता है और अल्लाह गफूर रहीम है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही वयगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, जो शिर्क करता है अल्लाह कभी उसको माफ नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करने से दिल को कभी सुकून नहीं मिलता, मुजाहिदा करना पड़ेगा, नफ्सों को छोड़ना पड़ेगा, मुजाहिदा करना है बस, जरूरत है, सोने की जरूरत है कुछ नहीं सो लो, खाने की जरूरत है खाओ, कुछ खरीदने के लिए जाने की जरूरत है जाओ, सब कुछ, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ जाए उसको पूरा कर लो, बस ये असल है। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुजाहिदा देखो, कहां के रहने वाले थे, ईरान के, ईरान में एक जगह थी राम हुरमुज, वहां के थे, बुखारी ने लिखा है। इनके वाली साहब जो थे ना वो फायर वर्शिपर थे, यानी आग की पूजा करते थे। इन्होंने कहा ये क्या नॉनसेंस है, आग की कोई पूजा करता है? रोजाना जलाओ जलाओ जलाओ, एक दिन हम ही जल जाएंगे। छोड़ दिया, घर को छोड़ा, बाप को छोड़ा, मां को छोड़ा, उनको बांध भी दिया था कुछ दिनों के लिए, छोड़ के भाग गए। कहां भाग गए? ईरान से सीरिया चले गए शाम, और वहां एक चर्च में चले गए। लगता है ये क्रिश्चियनिटी जो है ये सच्चा मजहब है, जो कभी नबी आए हुए नहीं थे या नबी के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। तो वो चर्च में गए, बुखारी शरीफ में है कि एक उनका उस्ताद चर्च का पोप इंतकाल कर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इमाम बुखारी लिखते हैं कि 10 उस्ताद उसके बन गए, 10 पोप के पास उसने इलम हासिल किया क्रिश्चियन का। इतनी मेहनत की उनकी उम्र मेरी और आपकी तरह 300 साल की उम्र थी उनकी। इसकी बात कर रहा हूं मैं, सलमान फारसी रजी अल्लाह का 300 मुजाहिद है। देखो अल्लाह को पाने के लिए 10-10 पोप और पादरी के पास, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसी चर्च में। लास्ट वाला जब मरने लगा तो उसको पूछा सलमान फारसी ने रजी अल्लाह तआला ने, भाई तुम तो मर रहे हो, मैं कहां जाऊंगा अभी और किसके पास जाऊंगा? किसी के पास नहीं जाना, क्या करो? मैं का सफर करो यहां से नखलिस्तान का, यानी मदीना मुनव्वरा का, वहां पाम ट्रीज बहुत है, यानी खजूर के दरख्त है, वहां एक नबी हिजरत करके आएंगे, उनके हाथ पर मुसलमान बन जाए। अब शाम से ये इसी तलाश में थे कि मैं कैसे जाऊं शाम से, उस जमाने में शाम से आना कोई आसान काम था मदीना मुनव्वरा? आजकल तो गाड़ियां हैं, और उस जमाने में चलकर आना, ऊंट नहीं, गरीब आदमी है, घर से भागे हुए हैं, कुछ भी नहीं। तो एक काफला गया हुआ था मक्का मुकर्रमा का बिजनेस करने के लिए, शाम जाता था काफला कुरैशियों का, लोगों का। उनको पूछा सलमान, देखो यार मुझे मदीना मुनव्वरा वो नखलिस्तान जाना, ठीक है चलो हमारे साथ, हम तो बता देंगे रास्ता, इधर मदीना इधर मक्का, ले आए। रास्ते में बगावत की, बहुत ज्यादा बगावत की उनसे, और उनको गुलाम बना लिया। अब तुम हमारे गुलाम, जैसे गुलाम के साथ मामला होता है वैसे इनके साथ मामला हुआ, काम काज बेचारे पास कुछ नहीं था, उनके साथ आ रहा, गुलाम बनाकर उनको बेच दिया एक यहूदी जो मदीना मुनव्वरा से आया था उसके हाथ पर, बेचते आपको इसको ले जाओ मदीना, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर बाजार में बेचा था, वह शरब वो भी समय बक्सिन दराहिम कुछ दिरहम में बेच दिया, गुलाम बनाकर बेचा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इनको भी गुलाम बनाकर बेचा। बड़े परेशानी में थे, कहां से आए थे, मुजाहिदा था नबी को मिलने के लिए, नबी को पाने के लिए। हाँ एक बात, जब वो आखिरी पोप था उसने कहा था तुम जाओगे नखलिस्तान तो वहां एक नबी आएगा, उसकी 3 निशानी मैं तुम्हें बता देता हूं, वो 3 निशानी है तो वही नबी है और वो आखिरी नबी, इसके बाद कोई नबी नहीं। कौन सी निशानी थी? कहा कि वो सदका नहीं खाएंगे, नबी सदका नहीं लेते। नंबर 2 वो हदिया लेंगे, हदिया, और नंबर 3 जो है उनकी 2 शोल्डर के दरमियान में सील ऑफ प्रॉफिट यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ होगा, 2 कंधों के दरमियान में, शोल्डर के दरमियान। ये 3 निशानी अगर आपको मिल जाए तो वही नबी है, ईमान ले आना उनके हाथ पर। अब वो उनके जहन में था। अब यहूदी ने उसको खरीद लिया, खरीद करके मदीना मुनव्वरा ले आए। मुजाहिदा देखो कैसा मुजाहिदा, रात 3 काम करना। उस यहूदी के पास बहुत सारे खजूर के दरख्त थे, जब ये मदीना आए तो देखा, हाँ यार बात तो सही है, बहुत खजूर के दरख्त है, यहीं आएंगे वो नबी, यहीं आएंगे। अब वो यहूदी उससे कहता था, ओ प्रचार खजूर तो रोजाना, खजूर तो पानी डाल, साफ कर, बना, ये वो मुश्किल था। अबू नईम ने अपनी किताब अलहिलिया में वाकिया लिखा है, तारीख बगदाद में लिखा है खतीब बगदादी ने, कि ये दरख्त पर चढ़े हुए थे खजूर तोड़ने के लिए कि उस यहूदी का कजन आया और उसने कहा, अपने कजन से तुम्हें बताऊं कि कूबा के पास कोई आदमी मक्का से आया है, वो अपने आप को नबी कहता है, उसका नाम मोहम्मद है और वो कहता है मैं आखिरी नबी हूं। अब सलमान ऊपर सुन रहे हैं, सलमान फारसी दरख्त पर सुन रहे हैं कि बात तो लगती है वही नबी है। कहा मुझसे रहा नहीं गया, आई जंप, नीचे कूदा मैं, नीचे कूदा दरख्त पर से नीचे कूदा और मेरे मास्टर को मैंने कहा यहूदी को कि मुझे दो चार घंटे की छुट्टी चाहिए, उन्हीं का मैं मिलने जा, पता तो चल गया कोई आया है, डेफिनेटली वही होंगे अगर वो कह रहे नबी हो, लेकिन देखना तो है ना वो कौन है। नहीं नहीं जा सकता, चारों पर फिर चढ़ाया, शाम तक चढ़ाया। शाम को जब ड्यूटी खत्म हुई तो कहा मैं दो चार घंटे के लिए जरा बाहर जाके आता हूं, ठीक है मुझे थोड़ी खजूर दे दो। वो खजूर तोड़ी हुई थी, उसमें से थोड़ी खजूर ले ली और चलना शुरू किया मस्जिद कुबा के पास। अल्लाह के नबी साबित आए हुए थे ना हिजरत करके, तो पहुंच गए वहां सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला। अल्लाह हम अपने साहबा की जिंदगी नहीं पढ़ते, वो कैसे थे, कैसे थे। पहुंच गए, अल्लाह देखा कौन है मोहम्मद, पहचानते तो थे नहीं, मोहम्मद। कहा मैं तुम्हारे लिए सदका लेकर आया हूं। फरमाया मैं सदका नहीं खाता, इसमें जो गरीब हो उनको दे दो। ये समझ गए कि वही नबी है जो मेरे पोप ने मुझे कहा था सदका नहीं लेते, और नबी सदका नहीं लेते, जकात सदका नबी नहीं लेते, अहले बैत के लिए सदका सदका की चीज नहीं है। इसीलिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने सदके की खजूर अपने मुंह में रखी तो अल्लाह के नबी ने कहा ठुको, हम अहले बैत खजूर सदके के नहीं खाते हैं, उनके मुंह से निकाला। ये जकात का माल कचरा है, सदका कोई बीमार हो गया तो निकालेंगे, कोई परेशानी होगी तो निकालेंगे, और नबी वो खाए। या फिर जकात के माल और सदके के माल जमा करेंगे तो कहेंगे नबी अपने आला औलाद के लिए जकात सदके का माल जमा कर रहा है। लोग हैं आज बोहतान करने वाले, तोहमत डालने वाले बहुत, नबी को नहीं छोड़ा। कुरान में है ना वमा कान अली नबी की नहीं यहुल, मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी ने चोरी नहीं की है, जिसने भी चोरी की है वो कयामत में वो लेकर आएगा। मेरे नबी पर इल्जाम मत डालो, कुरान में अल्लाह ने जवाब दे दिया। तो नबी पर चोरी का भी इल्जाम लगाया है, नबी को छोड़ता है, इमाम अबू हनीफा को नहीं छोड़ा, अबू बकर सिद्दीक को नहीं छोड़ा, उमर को नहीं छोड़ा, उस्मान को नहीं छोड़ा, हमें कौन छोड़ेगा। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम उनको काफिर कहा, उनको नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ने वाला है। ये तो होता है, इसलिए दो एक निशानी खत्म हो गई। ठीक है चलो बैठे, थोड़ी देर चले गए वापस, अभी इस्लाम नहीं लाए। दूसरे दिन शाम को फिर आए थोड़ी खजूर लेकर, फरमा अल्लाह के हबीब आपके लिए हदिया लेकर आया, फरमा लाओ खजूर ले ली, कसम बैठ जाओ। सलमान फारसी बैठे हो सारे साहब अक्का, खाओ इसमें से, ये हदिया है। तहातु तहापु, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, तुम एक दूसरे को हदिया देंगे तो मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोहब्बत बढ़ाने का सबसे बड़ा तावीज और सबसे बड़ा वजीफा मियां बीबी के दरमियान हदिया है। अगर बीवी शौहर को या शौहर बीवी को हदिया दे, आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी। ये अल्लाह के नबी का सच फरमान है। हाँ, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, दूसरी निशानी भी पूरी होगी, वापस चले गए, कल आऊंगा। आए, अब सारे साहबा के पास बैठ चुके, अभी तो हिजरत करके आए तो नहीं, नहीं सारे साहबा आए तो सामने बैठना चाहिए। सलमान फारसी रजी अल्लाह सामने बैठ, पीछे बैठ, पीछे आ गए अल्लाह के नबी के पीछे। फरमाया, सलमान पीछे क्यों जाते हो, मुझे पता है, आओ चलो देख लो। चादर को हटाई और वो दिखा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो सलमान फारसी कंट्रोल नहीं कर सके, जाकर के बोसा दिया और रोना शुरू किया। फरमा, अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दो। ईमान ले आए, ईमान ले आए। फिर अपना पूरा वाकिया बयान किया अल्लाह के नबी से कि मेरा बॉस जो है तो बहुत जुल्म करता है, बहुत जुल्म करता है, मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुकातबत कर लो, यानी यूं कह दो उसको कि इतने पैसे मैं तुम्हें अदा कर दूंगा, मुझे आजाद कर दो। इसको मुकातब कहते हैं कि अगर कोई गुलाम अपने मास्टर को, अपने बॉस को, उसके कहने के मुताबिक जो रकम है वो दे दे, जैसे औरतें होती है खुला, इतने पैसे हस्बैंड को दे करके तलाक ले लेती है, खुला कर लेती है, ऐसी यहां अगर अनबन है तो जानबूझ कर नहीं, वरना बहुत बड़ा गुना है, बहुत बड़ा गुना है। लानत है उस औरत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जान बुझ कर बगैर अननेसेसरी विदाउट एंड वैलिड एक्सक्यूज अगर कोई औरत तलाक लेती है, कुछ भी एक्सक्यूज नहीं है, तो फिर उस पर अल्लाह रसूल की लानत है, बहुत खतरनाक अजाब उसका। इसलिए कि तलाक से अल्लाह का अर्श हिल जाता है, अर्श हिल जाता है, अर्श हिलता नहीं, हिल जाता है अल्लाह का अर्श। इसलिए कोई वैलिड रीजन हो तो फिर समझ में आता है। तो मैं क्या जाओ गए कि मैं आजाद होना चाहता हूं, क्या लोगे? कहा, बहुत बड़ी रकम, छोटी मोटी थोड़ी, बड़ी रकम। क्या रकम है? 300 तोला चांदी, उस जमाने में 300 तोला चांदी और 100 खजूर के दरख्त लगाओ, पौधा प्लान करो, बड़ा हो जाए, उस पर खजूर लगे तब तुम आजाद। अभी पौधा लगा है, ये बड़े कब होंगे, खजूर कब लगेगा, सालों साल निकल जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा। बहुत बढ़िया बात है ना, इस यहूदी ने खतरनाक शर्त लगाई, ये काम करो तुम आजाद है, क्योंकि बहुत अच्छा आदमी, ताकतवर, सलमान फारसी फारस के रहने वाले थे। अच्छे काम वाले को लोग छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना निकाल लेते, कहीं ये कहां लगाए, कहां छूटने वाला है, मेरे तरफ खिदमत करेगा ही कई सालों तक। ये तो रोने लगे, परेशान है यार, ये तो कौन करेगा, पौधा लगाऊं, वो कब बड़े होंगे, खजूर के दरख्त वैसे भी 9-10 साल लग जाते हैं, फिर खजूर आई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आने के बाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने के मुताबिक मैंने उसको पूछा तो उसने दो शर्तें लगाई, 300 किया चांदी लाओ और 100 दरख्त लगा। एक रिवायत में 300 दरख्त का भी जिक्र है। अब ये 100 दरख्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराओ मत, घबराओ मत, चलो। साहबा से फरमाया, 100 पौधे जमा करो, 100 प्लांट खजूर के जमा करो। सलमान से कहा, जाओ तुम वहां उसके खेत में, बाग में 100 खड्डे खोद दो। प्लांट करने के लिए खड्डे चाहिए ना, छोटे छोटे खड्डे, तुम जाकर खोदो, हम आते। मेरे नबी के मौजजात भी अजीब अजीब है, बहुत अजीब अजीब, कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। फिर बुखारी शरीफ में कैसे कैसे मौजजात नजर दिए, अजीब 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 अजीब। फरमाया, जाओ तुम, मैं तो फिर चला गया और 100 खड्डे खोदे। अल्लाह के हबीब आ जाओ, अब वो यहूदी को क्या पता है ये नबी के मौजिजात क्या है, क्या मौजिजात है। तो इसने कहा ठीक है बुला लाओ उनको, दगाओ सो पूरे। वो तो यही सोच रहा था कि सालों साल के बाद जाएगा, अभी कहां जाने वाला है। दरख्त ऐसे तो आप देखो ना, जाकर पूछना किसी अरब से कि ये दरख्त उठते कितने साल लग जाते हैं, कितने मेहनत और मुजाहिदा करना पड़ता है उसके पीछे, तब जाकर ये खजूर के दरख्त बड़े होते हैं। हर किस्म के अलग अलग, अजवा के अलग, सुफी के अलग, अंबर के अलग, पुना के अलग। और उस जमाने में पानी थोड़ा था, पानी ला ला करके, इसीलिए तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने एक कुआं खरीदा मुसलमानों के लिए, पानी नहीं, वो कुआं है आज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए 100 पौधे साहबे किराम के साथ। अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से हर खट्टे में एक एक पौधा प्लांट रख दिया। पूछना क्या था, एक ही दिन, दो दिन, तीन दिन में ये दरख्त बड़े हो गए, बड़े दरख्त हो गए। और अजीब बात, अजीब बात, वैसे लगते साल साल लग जाते हैं, ये अजीब दरख्त उग गए और साल में एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा खजूर आने लगी। तकी साहब ने एक बात लिखी है कि आज से 10-15 साल पहले मैंने उस बाग को देखा है। अरब लोग उसकी खजूर नहीं बेचते हैं, वो बरकतन बड़े लोगों को हदिया देते हैं, बादशाहों को देते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी के हाथ के लगाए हुए बागात हैं। और उसकी खजूरें लंबी होती थी, लंबी, राउंड नहीं, कच्ची भी खाओ तो भी मीठी है, वरना कच्ची खाओ तो आपके मुंह में फीकी लगेगी, अच्छा नहीं लगता। उसकी कच्ची खजूर भी खाओ तो भी मीठी है। अल्लाह के नबी का मौजिजा ऐसा है। 100 पौधे, सलमान फारसी फरमाते आप 99 लगा दो, एक मैं लगा देता हूं, हमारा ठीक एक लगा दो। उन्होंने जो लगाया उगा ही नहीं उगा, खत्म हो गया। अल्लाह के फरमा फिर मैं लगा देता। अब ये 100 पौधे का तो मसला हल, 10 साल के बजाय 10 महीने से पहले फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी एक शर्त बाकी है, 300 तोला उकिया चांदी देनी है ना, वो कहां से लावे, बहुत ज्यादा है वो तो उस जमाने की। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने चांदी दी सदके के तौर पर, फरमा इसको गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चांदी को ली, वो 300 नहीं थी लेकिन मेरे नबी की बरकत, वहां जाकर दे दो। उसने तोली तो 300 ही निकली, ये काम भी हो गया। इस वाक्य में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला की जिंदगी ऐसी अजीब थी कि एक मरतबा एक आदमी ने, जब ये कुस्तुनतुनिया रहने के लिए चले गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, तो इतने सिंपल होते थे कि एक आदमी मालदार ने उनको कुली समझा, कुली आता है जो ट्रेन स्टेशन पर जो सामान उठा के, ये समझ कर कहा इधर आओ मेरा सामान उठाओ, इतना सिंपल थे। लेकिन नहीं कहा मैं सलमान फारसी हूं, बहुत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, सलमान मिन अहलिल बैत, सलमान का कोई नहीं ये हमारे अहले बैत में से, जैसे मेरा बेटा हसन हुसैन है, मेरी बेटी फातिमा ज़ैनब है, ये भी अहले बैत में से है, मेरे खानदान में से। कौन, कितना बड़ा दर्जा मिला उनको, क्यों, ये मुजाहिदा करके आया है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में, मेरी माए और बहने, वल्लज़ीना जाहदू फीना, मेरे रास्ते में मुजाहिदा करोगे, मेहनत करोगे, जिक्रुल्लाह पढ़ोगे और करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, नमाज पढ़ोगे, तहज्जुद पढ़ोगे, शराब चाश पढ़ोगे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करोगी, गुनाहों से बचोगी, वल्लजी नजाहदू फीना, नफ्स की मुखालिफत करोगी, शैतान की मुखालिफत करोगी, लनहदियन्नहुम सुबुलना। हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा मारिफुल बयान अल कुरान में लिखा है, मैं उसकी उंगली पकड़ कर सिराते मुस्तकीम पर चला दूंगा। उंगली पकड़कर, लेकिन मुजाहिदा करना पड़ेगा, इसलिए कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैतल से वापस आए, जहाज से वापस आए, मदीना मुनव्वरा में एंटर हो रहे थे। इमाम बैहकी ने इस रिवायत को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला से नकल फरमाया, फरमाया आदा अदुवक नफ्सुक अल्लती बैन जंबई, आदा अदुवक, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारी पहलू में बैठा है, इससे भी बड़ा, यानी हम जिहाद से आए, उससे भी बड़ा दुश्मन ये है। ये वो तो टेम्पररी हमारा दुश्मन थे, ये तो हर वक्त हर मिनट हर घड़ी रात में दिन में सुबह शाम हमारे दुश्मन है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु औ कमा काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद करने वाला वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे। यह सर है, द पर्सन हु फाइट्स अगेंस्ट हिज डिजायर, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वजालना मिनल जिहाद लसगरी लल जिहाद अकबर, छोटे बैटल से हम आ गए बड़े बैटल की तरफ, यानी अपने नफ्स की तरफ। हमारा नफ्स ये बहुत बड़ा दुश्मन है, उसका मुकाबला करो। सो इससे मालूम होता है कि आदमी अपने नफ्स के खिलाफ करेगा तो ही उसको फायदा होगा, वरना फिर तो नफ्स उसको जहन्नम में ले जाएगा। खैर, ये बहुत लंबी लंबी बातें हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, इस जमाने में लोग अपना वजन घटाने के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन डाइटिंग बाकायदा एक फैशन बन चुका है ना, डाइटिंग बोलते ना इसको, और उसके लिए बाकायदा जिम में जाते हैं और जाकर के वजन घटाने के बारे में मेरे पास मैसेज आते रहते हैं शुगर वालों की तरफ से, आओ अपने वजन कम करने के लिए आ जाओ फुना जगह फुना टाइम, मेरे पास टाइम कहाँ है। बाज अभी क्या नई नई दवाएं आई है, चाइनीज दवाएं भी, वजन कम हो जाएगा। मर्दों से ज्यादा औरतों में ये बात ज्यादा है, बहुत मोटी हो गई चलो कम करने का कोई दवाई मिल जाए। मौलाना तकी उस्मानी साहब ने फरमाया, मैंने एक मरतबा एक डॉक्टर का मजमून पढ़ा, उसमें लिखा था उसमें दवा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने लिखा कुछ करने की जरूरत नहीं वजन घटाने के लिए, जब खाने के लिए बैठो तो खाने के दरमियान अगर तुम्हारे दिल में खाते खाते ये आए जी कि एक लुकमा और उठाऊं ज्यादा पेट भर जाए, उसी वक्त खाना छोड़ दो। जब तुम्हारा दिल चाहे कि मैं ज्यादा खाऊं उसी वक्त हाथ को उठा लो, हर खाने में ऐसा करोगे, फरमाया इसी से तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, डाइटिंग करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने लिखा है जो मुक्ति तरीका लिखा है, जिसको हम हमारे वालों का पहले से कहते हैं तकलील ताम कम खाओ, डाइटिंग का मसला है। समझ में आ, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। या रहम राहिम या दल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या दयान या सुल्तान, या कदीम अल एहसान। اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم। اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس مہینے میں ایک بہت بڑی رات آ رہی شب قدر، اے شب برات، یا اللہ اس رات کے ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری پریشانی اور مشکلوں کو دور فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بیٹیوں کو ہمارے بیٹوں کو الہ العالمین ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالح نصیب فرما، جو اولاد والی ہے اللہ ان کے اولاد کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اے اللہ آخری جب تک دنیا باقی رہے ہماری نسلوں میں اللہ علماء صلحاء اولیاء متقین پیدا فرما، ہماری نسلوں میں ہم سے لے کر قیامت تک ہماری نسلوں کو اے اللہ، اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو اے اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، قبائل سے تو حفاظت فرما یا اللہ، فتنوں سے بچا لے، آنے والے فتنوں سے بچا لے اے اللہ، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، غزہ میں، فلسطین میں، ویسٹ بینک میں، سوریا میں، اللہ ساری دنیا میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، یہاں اس کنٹری میں، جہاں جہاں اے اللہ سب کی جان، مال، آبرو، عزت، ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، میری مائیں اور بہنیں دور دور سے آئی اللہ، ہم سب کا آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما یا اللہ، ہم جو بھی پریشانیاں ہماری زندگیوں میں ہوں، ہمارے گھروں میں، اولاد میں، اللہ تو دور فرما، بیماریوں سے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما، بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں آ نہیں سکتی عمر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے گھر پر سن رہے ہیں، اللہ سب کا سننا قبول فرما، نیشنل اور انٹرنیشنل اے اللہ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہمارے دوست پہنچا رہے ہیں، ویب سائٹ کے ذریعے سے یا پھر ریکارڈنگ کے ذریعے سے یا پھر مکسر کے ذریعے سے یا ای مسجد کے ذریعے سے، اللہ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کا سننا قبول فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.